शहर में जाति आधारित भेदभाव? शहर में ये सब नहीं दिखता, यह सब गांव में होता है।
अरे होता होगा, पर मुझे अपने आसपास ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता।
जब मेरे आसपास के लोगों के साथ मैंने जाति के बारे में बात करने की कोशिश की तो उनके जवाब कुछ ऐसे ही होते हैं, क्योंकि उन्हें भी मेरी तरह इस व्यवस्था से फायदा ही हो रहा है। तो भाई ये सवाल ही नहीं बनता। कुछ कहते हैं, मुंबई की इस बिजी लाइफ में समय कहाँ है लोगों के पास इन सब बातों के लिए? अरे जो मेहनत करेगा वही तो आगे जाएगा। यह सुनकर भी जाति शब्दों को मानो कैंसिल कर दिया जाता है, पर क्या सच में ऐसा है? इस एपिसोड में मैं रोहन अपनी बात रखना चाहता हूँ कुछ और वॉइसेस के साथ। यह आवाजें मेरे आसपास के दोस्त, साथी, कलीग की ही है, जिनके पास मैं इन सवालों को टटोलता रहा कि शहर में जाति कहाँ है, जाति हम कहाँ सीखते हैं, मेरी ऊंची जाति के होने का मतलब क्या है, और सबसे अहम सवाल, मैं इसकी बात किससे करूं? चलो फिर, आप जो मुझे सुन रहे हैं तो उन्हीं के साथ यह बात शुरू करता हूं इस एपिसोड में, जिसका नाम है आजकल जाति कहाँ है। किसी को ठेस ना पहुंचे इसलिए जिनसे मेरी बात हुई है उनके नाम बदल कर दिए हैं। कुछ लोग दिल्ली से हैं तो कुछ बॉम्बे से, कुछ लोग उच्च जाति से हैं तो कुछ एससी है, प्रशांत, लिखित, स्वाति, राजेश, जतिन और मनस्वी। प्रशांत बचपन से ही मुंबई शहर में स्थायी है, फिलहाल वो मुंबई के एक बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में काम कर रहा है। प्रशांत का परिवार बौद्ध धर्म को मानता है, उसने मुझे अपना यह अनुभव बताया।
मैंने ये जो सिटी बैंक मैंने बोला, मैंने अभी भी ज्वाइन किया है, ठीक है। जो मेरे टीम मेट्स उनको पता नहीं कि मैं बौद्ध हूँ, और मेरे को वो बताने की जरूरत भी नहीं पड़ी, मतलब तो उनको शायद पता नहीं था। तो हम लोग एक बार लंच पे बैठे थे, सब लोग 5-6 लोग हैं, ठीक है। तो उसमें से एक दूसरा लड़का है, उनको घर लेना है, तो वो घर लेना है, तो वो उस बोल रहा कि मैं घर लेना, मैं कहाँ लूँ? तो दूसरा एक लड़का था, उसने सजेस्ट किया कि तुम इस जगह पे घर लो। तो उसने बोला नहीं, मैं उस जगह पे घर नहीं लेना चाहता, क्योंकि वहाँ पे ना ये जय भीम वाले लोग रहते हैं और वो लोग बहुत गंदे होते हैं, ऐसा उसने तभी बोला। अच्छा। मतलब लोग अभी भी वही सोचते हैं कि जय भीम वाले लोग गंदे रहते हैं, ठीक है ना। तो वो तभी मुझे, मैंने सिर्फ सुना, मैंने उस पर कुछ एक्शन नहीं किया, मुझे वो जरूरत नहीं लगी कि ठीक है, मतलब इस चीज के लिए रिस्पॉन्ड करना चाहिए।
लो, साल 2022 में मुंबई के एक कॉरपोरेट ऑफिस में की हुई ये बात, इस बात ने बेचैन करने वाले कुछ सवालों को मेरे सामने खोल दिया है। अभी मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ मेरे आसपास किस समुदाय के लोग रहते हैं? उनमें एक विशिष्ट जाति से आने वाले लोगों की ही संख्या ज़्यादा क्यों है? क्या हम कहाँ रहेंगे इस बात का फैसला उस सोसाइटी या बस्ती में रहने वाले लोगों की जाति को देखकर किया जाता है? मैं जहाँ रहता हूँ वहीं से जाति की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है कि यह जाति ऐसी है, वो जाति वैसी है, इनके साथ उठा बैठा करो, इनके साथ नहीं। फिर मुंबई की भीड़ भाड़ वाली लोकल ट्रेन हो या मेरे दोस्तों के हैंगआउट प्लेसेस, जाति तो हर जगह है, वो कहाँ छुपती है? अब सोचता हूं कि यह सब शुरू कहां से हुआ। जब मैं 10-12 साल का था, शायद उसी समय मुझे औरों से अलग होना क्या होता है इस बात का अनुभव हुआ। बाकी बच्चों की तरह मैं भी छुट्टियों में अपने गांव जाया करता था। तब हम सब बच्चे एक साथ ही खेला करते थे। उस समय तक मैं सिर्फ उन्हें उनके नामों से जानता था। कभी कभी हम हमारे आंगन में ही खेलते थे, तब प्यास लगने पर हम सीधे घर के अंदर चले जाते थे और पानी पी लेते थे। पर एक लड़का था, संकेश, उसे हमारी दादी घर में आने नहीं देती थी, ना उसे मटके से पानी पीने देती थी, क्योंकि वो गांव से थोड़ी दूर बौद्धवाड़ी में रहता था। उसके घर पर जाने से मनाही नहीं थी, पर उसके घर जाकर कुछ खाना नहीं है यह बताया जाता था, और अगर गलती से उसके घर जाकर कुछ खा लिया तो आने पर दादी से डांट भी सुननी पड़ती थी। तो इसी तरह व्यवहार में मैं जाति सीखता रहा। ऐसा अनुभव सिर्फ मेरे अकेले का नहीं था। राजेश, जो मुंबई में रहता है और यूपी से है, उसने भी यह बात बताई।
और मेरी माँ ने सब, मतलब एक कोना रख दिया था खाना बनाने के लिए, और बर्तन स्पेसिफिक थे कि 2 ईटा, और मतलब एक पूरा किचन सेटअप कर दिया था। उनको आना है, खाना बनाना है और जाना है, बस वहीं से, मतलब नीचे ही उसके पास में सीढ़ी थी, तो वो एक था। मैं बोला ये सब मैं मानता नहीं हूँ, और थोड़ा बहस हुआ हमारा, बोलते तू अभी नहीं मानता लेकिन बाद में मानने लगेगी, ये ऐसा बहस हुआ और थोड़ा झगड़ा किया और मैं साइड में हो गया कि ये कहीं ना कहीं पावर से जुड़ा हुआ है, उनके पास पावर है कि उनको इंक्लूड किसको करना है।
दिल्ली से आने वाले लिखित ने भी इसमें अपनी बात जोड़ी।
तो बिहार के जिस गांव से मैं आता हूँ उस गांव का नाम है बासोपट्टी, और जाति मुझे पता नहीं मैंने कब पहली बार सुना था, क्योंकि वो इतना इनहेरेंट है मेरी पहचान में कि शायद मुझे याद नहीं मैंने पहली बार कब सुना था। क्योंकि मुझे पता है, मतलब जब से मुझे होश तब से मुझे जाति के बारे में पता है कि हमारे गाँव में जो मोहल्ले बटे हुए थे, टोल या पट्टी कहते हैं हमारे लोकल मैथिली में, और उस टोल जो का जो नाम होता है वो जाति के नाम पर होता है। जैसे दुसाद टोली, मतलब जो दुसाद पासवान कास्ट होती है उसके दुसाद टोली, चमार टोली, ब्राह्मण टोली, है ना, सूरी टोली। तो हम लोग जब भोज खाने जाते थे बचपन में तो वो बाभन टोली जाते थे, मतलब ब्राह्मणों की टोली में जाते थे। क्योंकि हम लोग जब मेरे दादाजी युवा हुआ करते थे तो उस टाइम पे हम लोगों को आउटकास्ट कर दिया गया था अपने कास्ट से, क्योंकि मेरे दादाजी और उनके बड़े भाई जो है वो कम्युनिस्ट लीडर के फॉलोअर्स हुआ करते थे। तो किसी एक हमारे गांव के कम्युनिस्ट लीडर ने इंटरकास्ट मैरिज किया था, जिसकी वजह से ब्राह्मणों ने उन्हें एक्चुअली आउटकास्ट किया था। तो उनके साथ साथ हम लोगों को भी, हमारे जो दादाजी वगैरह थे उनको भी आउटकास्ट कर दिया गया। तो हम लोग ने कुछ जमीन खरीदा था, तो सात टोली और सूरी टोली, दो मतलब दो टोलियां हैं, उस दोनों कास्ट के बीच में कुछ पांच घर ब्राह्मणों के हैं। तो उस जगह पे हमारे दादाजी ने वो जमीन खरीद के वो फिर बसे थे वहां। तो जब हम लोग बैठा करते थे अपने दलान वगैरह पे, तो दलान एक सिस्टम होता है जो घर के बाहर एक जगह होती है जिसको दलान कहते हैं। तो दलान पे जब हम लोग बैठा करते थे, तो जब तक हम लोग खड़े रहेंगे तो वो बूढ़े भले ही हों पर वो खड़े रहते थे, तो हमारे सामने वो बैठते नहीं थे। मैं इनहेरेंट सब यूज कर रहा हूँ बिकॉज वो मेरे लिए एक सच्चाई है जाति को लेके। इन चीजों को देखते हुए मैं बड़ा हुआ हूँ अपने आस पास।
लिखित को सुनकर यह लगा कि अपर कास्ट में भी तो पढ़ते हैं, वो एक श्रेणी के अंदर भी ऊंच नीच के रिश्ते बनाती है, और हम बचपन से ही सीखते रहते हैं कि उसके अगेंस्ट जाएंगे तो क्या होगा, उसकी पनिशमेंट मिलेगी, और आप दुनिया में कहीं भी जाओ इनको मेंटेन करना है।
तो उस समय पे राजद की सरकार हुआ करती थी बिहार में, जिसको सामाजिक न्याय वगैरह के लिए बहुत माना जाता है। तो उस समय क्या हुआ था कि एक बार एक आंदोलन छिड़ा था, जब कहा गया था कि कोई भी जो है दुसाद जो पासवान समाज से लोग आते हैं, ये तय हुआ कि ब्राह्मणों के नहीं जोतेंगे वो लोग। और पहली बार शायद मेरे नजर में एक विद्रोह या विरोध कह लीजिए, जो एक मतलब एक प्रभुत्व के खिलाफ हुआ था। कभी कोई बहुत संग्राम नहीं हुआ, लेकिन वो अंडरकरेंट हमेशा रहा करता था। तो उसके बाद ये हुआ कि हमारे दलान पे बैठने लगे लोग सभी, लेकिन जो एक सच्चाई थी कि छूना नहीं है, भले हम खेल रहे हैं पर छूना नहीं है, ये सब बहुत तय था, ये सब सिस्टम बहुत तय था। और शायद इसीलिए मतलब मन में बैठ भी जाता है ना, और ये चलता रहा जब तक मतलब मैं बिहार में था, ये सच्चाई बनी रही थी।
गांव में जो हो रहा था उसकी वजह से मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इस तरह का बर्ताव मेरे सामने हो रहा था, मेरे साथ नहीं। स्वाति जो मुंबई में रहती है वो इसे एक अलग फीलिंग के साथ जोड़ती है।
छत्रपति शिवाजी महाराज जो है उनका और हमारा लास्ट नेम भोंसले, हम वो सरनेम शेयर करते हैं, तो जिस वजह से एक अलग तरीके का प्राइड घर में सब लोगों के अंदर है कि हम एक ऊंचे खानदान से आते हैं या फिर वहाँ ताल्लुक रखते हैं। और उस वजह से हमेशा बचपन से हमें ये कहा गया है या सुना है बार बार आसपास कि हम थोड़े सुपीरियर है बाकियों से, हम क्षत्रिय है, हम वो है जो लड़ाई करने जाते हैं, हम सुरक्षा करते हैं लोगों की, या हम प्रोटेक्ट करने वाले इसमें से आते हैं। और ऑफ कोर्स बचपन में ये डिस्क्रिमिनेशन के हिसाब से कभी देखा नहीं था, तो तब ये सुन के अच्छा लगता था कि आप किसी ऐसे खानदान से आते हो या फिर आप ये सरनेम उस व्यक्ति के साथ शेयर करते हो जिसे इतने सारे लोग मानते हैं। तो एक तरह की खुशी थी शायद और प्राइड था
जो बचपन में गांव से सीखा था, उसके हिसाब से अपनी जाति की वजह से हमें प्राउड फील होता था। फिर हम शहर में आकर भी अपनी जाति को साथ में ही लेकर चल रहे थे। हम उन्हीं सोसाइटी में रहे हैं जहां हमारे लोग रहते हैं, वो हमें जाति का मुद्दा नहीं लगता क्योंकि वो मेरी सहूलियत से जुड़ा है। पर हाँ, जहाँ रिजर्वेशन आरक्षण की बात आ जाए फिर जाति दिख जाती है, क्योंकि वहां मेरी सहूलियत को खतरा महसूस होता है। दसवीं की परीक्षा के बाद जब मैं अपने कॉलेज के एडमिशन की लिस्ट लगने का इंतजार कर रहा था, तब मेरे ही दोस्तों में से मुझसे कम नंबर आए हुए दोस्तों को मुझसे पहले एडमिशन मिल रहा था आरक्षण की वजह से। मेरे जैसे और भी दोस्त थे जो ओपन कैटेगरी से आते थे और हम सबके दिलों में आरक्षण को लेकर एक गुस्सा था। जब यह पता चला कि यह आरक्षण जाति पर आधारित मिल रहा है तो जिन्हें मिल रहा था उनके बारे में भी गुस्सा तैयार हो रहा था। फिर लंबे समय तक यह गुस्सा एक एक अनुभव के साथ बढ़ता जा रहा था क्योंकि मेरे घर, दोस्त और आसपास के सभी लोग मेरी तरह उच्च जाति से थे और हम में से किसी को भी यह नहीं लगता था कि सिर्फ जाति के वजह से किसी को शिक्षा, फीस या नौकरी के अवसर में किसी प्रकार की छूट मिलनी चाहिए। औरों की तरह मौका मिलने पर मैं भी उन लोगों को यह महसूस कराने की कोशिश करता था कि उन्होंने मेरा हक छीना है। जतिन ने बताया कि कैसे बार बार खुद के एडमिशन को जस्टिफाई करना पड़ता है। क्या अपर कास्ट वालों को भी इस तरह जस्टिफाई करना पड़ता है? जतिन नागपुर में रहता है, फिलहाल एक सामाजिक संस्था में काम करता है।
एक चीज तो ये हुई मेरे साथ, मुंबई का जैसे एग्जाम मैंने पास किया और तो मेरा एक दोस्त था बैंगलोर में, तो उसने कहा कि रिजर्वेशन था क्या, तो मैंने कहा हाँ, तो उसने बोला कि फिर तो इजीली हो गया होगा ना, तो मैंने कहा कि यार, मतलब मैं उस टाइम पे कुछ बोल नहीं पाया, मुझे कुछ समझ में नहीं, उस टाइम में ब्लैंक था, चुप हो गया। तो मैंने क्या किया, उसकी बात मेरे को इतना इफेक्ट कर गई, मैंने क्या किया, मैं वापस गया, डेस्कटॉप था उस टाइम पे, तो ओपन किया डेस्कटॉप और मैंने देखा कि मेरे मार्क्स कितने हैं, रिटर्न में मार्क्स देखे और मेरे इंटरव्यू में कितने मार्क्स है, मैंने दोनों देखे और मेरा नाम जो था सिलेक्शन लिस्ट में लिस्ट वन में आता है, जैसे लिस्ट वन, लिस्ट टू, लिस्ट थ्री रहती है ना, तो लिस्ट वन में था, ठीक है, पर मेरे मार्क्स भी बाकी जनरल कैटेगरी से ज्यादा थे, लिस्ट वन की बात कर रहा हूँ। इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग लोगों में ये नहीं है कि हम उनकी सीटों के अगेंस्ट कम्पीट नहीं कर रहे हैं, हम अपनी सीटों के अगेंस्ट कम्पीट कर रहे हैं, और जब आप हमारी सिटी के अगेंस्ट आप नंबर ऑफ एप्लीकेशन या नंबर ऑफ लोग देखेंगे वो बहुत ज्यादा है। सो जो लोगों में जो धारणाएं बनाई गई है कि ये हमारी सीटें ले रहे हैं या कम नंबर लेके इधर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम अपनी सीटों के लिए कम्पीट कर रहे हैं, जबकि हमारी तो कॉम्पिटिशन वे मोर ज्यादा दिखता है कभी कभी।
जतिन ने कहा तब ध्यान गया कि जनरल कैटेगरी से हम कितने लोग कम्पीट करते हैं और उसके सामने दूसरी कैटेगरी से कितने, इन आंकड़ों के बारे में कभी सोचा ही नहीं। और यह कहना कि यह हमारी सीट है, यह भी तो बचपन से सीखे हुए व्यवहार का नतीजा है। आरक्षण ही वो मुद्दा है जब मैं जाति की वजह से अपने आप को विक्टिम की तरह देखता हूँ कि मेरे साथ ही अन्याय हुआ है और वो भी मेरे उच्च जाति के होने की वजह से। जाति और उस पर आधारित आरक्षण को सही से समझने का मौका मुझे अपनी उम्र के 23 साल में फिर से मिला जब मैंने एक फेलोशिप प्रोग्राम में हिस्सा लिया। मुंबई में पुकार नाम की एक संस्था द्वारा यह फेलोशिप चलाई जाती थी जिसे यूथ फेलोशिप प्रोग्राम कहा जाता था। आप सोचिए, 16 से 23 साल की उम्र तक मेरी सोच को बनाए रखने के लिए आसपास इतने ढांचे थे कि मैंने उसे कभी चैलेंज ही नहीं किया। मुझे सामाजिक क्षेत्र में काम करने की रुचि थी पर जाति से जुड़े मेरे पूर्वाग्रह वैसे ही थे। उन पूर्वाग्रहों पर सवाल उठाने वाली परिस्थिति पहली बार मेरे सामने आई जब उसी फेलोशिप प्रोग्राम के एक डिबेट में मैंने अपने आप को जाति आधारित आरक्षण के खिलाफ बात करने वाले समूह में खड़ा पाया। उस दिन आरक्षण को लेकर मेरे अंदर जितना भी गुस्सा था मैंने अपने जैसे ही कुछ युवाओं के सामने रखा। एक पल के लिए भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। मेरी सोच पर बाकी साथियों ने काफी सवाल उठाए, तो क्या इसका मतलब रिजर्वेशन एक प्रोटेक्शन है? उस दिन इस बात को लेकर मैंने बहुत सोचा। इस सब के बाद एक सवाल काफी समय तक मेरे सामने आता रहा कि आखिर क्यों मेरे स्कूल में जाति और आरक्षण के बारे में इस तरह की चर्चाएं नहीं की जाती थी। ऐसा तो नहीं था कि हमारे स्कूलों में, दोस्तों में, शिक्षकों में जाति मौजूद नहीं थी? इस पर लिखित ने अपने स्कूल का एक किस्सा सुनाया।
दो स्कूलों में मतलब पढ़ा हूँ मैं, मॉडर्न पब्लिक स्कूल, न्यू चिल्ड्रंस एकेडमी करके स्कूल था। हमारे क्लास जो हुआ करते थे, स्कूल के क्लास है ना, वो बहुत न्यूट्रल थे एक कुछ हद तक, लेकिन वो इसलिए न्यूट्रल थे क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग पढ़ने ही नहीं आते थे। मतलब या तो वहाँ पे ब्राह्मण और सूरी और राजपूत, जो अपर कास्ट बेसिकली है, वो जो सो कॉल्ड है, वो आता था बस पढ़ने के लिए। और टीचर्स में भी मोस्टली वही हुआ करते थे, यही कास्ट मोस्टली रहा करता था। मुझे एक बस याद है कि हमारे एक अशोक पासवान सर थे, है ना, वो मतलब एक अच्छे टीचर थे और वो हम लोगों से कभी पानी नहीं मांगते थे, है ना, वो खुद पानी पीते थे अपना लेके। मतलब बाकी सारे टीचर्स हमको बोले थे तुम पानी लेकर आओ, लेकिन वो अपना पानी खुद लेके पीते थे, वो याद है मुझे। बट जो हाइट थी चीजों की वो ये था कि जब बस में जाते थे और बस हुआ करती थी काफी खचाखच भरी हुई, तो उस बस में भी मतलब अगर मतलब पहचान लिया जाता है कोई ब्राह्मण है और कोई ये है, जब तक नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब तक ब्राह्मण अगर है बस में तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि भैया उठो, है ना, सीट पे कैसे बैठ गए तुम, उठो।
अब मेरे सामने अपनी ही परतें खुल रही थी कि मैं जाति कहां कहां सीख रहा था। इस व्यवस्था पर बात करने के मौके भी कम ही थे, कई बार सिर्फ अपने आप को इस अनकंफर्टेबल परिस्थिति में लाने की तैयारी न होने की वजह से घर या स्कूल जैसी जगहों पर इस विषय को छेड़ा नहीं जाता। जैसा मनस्वी ने भी बताया, मनस्वी मुंबई में पली बड़ी है।
छठी या सातवीं कक्षा में थी शायद, मैं थोड़ा मतलब उस समय एज अ लिव्ड एक्सपीरियंस कि लोगों के लाइफ में होता है कास्ट, वो मैंने नहीं समझा था, पर वो जैसे हम लोग अकबर और जहांगीर के बारे में पढ़ रहे थे वैसे ही हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में कास्ट का विषय था, तो मैंने उसको वैसे ही पढ़ा जैसे मतलब सिविक्स का था, तो पार्लियामेंट में इतने लोग बैठते वैसे ही कास्ट को वैसे ही समझा था। पर उस समय ना कि जिस तरीके से पढ़ाया गया, ना कि जिस तरीके से चर्चा हुआ उसके बारे में, कि वो एक एक्सपीरियंस है जो जिससे मैं भी जूझ रही हूँ, जिससे मेरे पास में बैठ रहे हैं लोग वो भी जूझ रहे हैं, और जिसमें टीचर भी शायद उसमें इन्वॉल्व्ड है, तो वैसे टाइप का मेरा कभी मतलब सोच भी नहीं था, और कभी मेरे को वो ये सवाल भी नहीं रखे थे कि मैं ऐसे सोच पाऊँ। तो इट वाज ऑलमोस्ट कि ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, वो एलिफेंट इन द रूम, आपको मालूम है कि वो है कुछ पर उसके बारे में बात नहीं किया जाता। और ख़ास करके मुझे 8th-9th स्टैंडर्ड में थी तब मैंने घर पे पूछा था कि हमारा कास्ट क्या है, और उस समय क्योंकि मेरे पेरेंट्स अलग धर्म के हैं, तो मेरे फादर ने वो क्रिश्चियन मतलब उनके फैमिली क्रिश्चियनिटी फॉलो करते थे, तो उन्होंने बोला था हमारा कोई कास्ट नहीं होता है। पर मम्मी ने बोला कि मुझे नहीं पता, हमको पता मतलब पता करना होगा, शायद ये है शायद वो है, और करते करते बात इस पॉइंट पे आ गया कि हम लोग कास्ट में नहीं मतलब कास्ट सिस्टम को नहीं मानते हैं, हम उस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन हम लोग नहीं करते हैं, तो कास्ट हमारे लिए एक नॉन डिस्कशन टॉपिक है। तो ऑलमोस्ट ऐसे था कि हम इसको इग्नोर कर रहे थे, या इसको हम कहीं ना कहीं हम ऐसे मान रहे थे कि हम इससे दूर है। और उस समय पर मुझे वो बहुत एक प्रोग्रेसिव सोच लगा कि हमारे लिए हम कास्ट को मानते नहीं हैं, तो ये एक नॉन डिस्कशन टॉपिक है। पर मुझे बाद में समझ में आया कि वो आई डोंट थिंक वो पूरा ट्रूथ था, एंड आई थिंक वो कहीं ना कहीं ट्रूथ से छुपने का है।
मेरे घर में भी तो यही कहते थे, हम नहीं मानते तो है ही नहीं। जैसे मेरे लिए यह समझ बनाना उस फेलोशिप के बाद शुरू हुआ, वैसे ही लिखित और मनस्वी भी ट्रेस कर रहे हैं कि कब उनके लिए यह खुलने लगा और डिस्कम्फर्ट समझ आया।
और एक चीज जो मेरे ख्याल से इस कॉलेज के समय पे जिसने सबसे ज्यादा सोचने को मजबूर किया, माय सेंस ऑफ इंक्लूजन जो कहते हैं, वो ये था कि अशोक भारती एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और पॉलिटिशियन भी हैं जो नैकडोर से जुड़े हुए हैं, और नैकडोर के साथ वो हमारे एक सेशन लेने आए थे मास्टर्स के टाइम पे। तो उन्होंने एक छोटी सी एक्टिविटी करवाई थी, उन्होंने कहा कि आप अपने 10 फ्रेंड्स के नाम लिखिए, है ना, और हमने 10 फ्रेंड्स के नाम लिखे। फिर उन्होंने कहा कि उनका जेंडर लिखिए, तो हमने जेंडर लिखा उनका। फिर उन्होंने कहा कि उसका रिलीजन लिखिए, तो फिर हमने रिलीजन लिखा। फिर उन्होंने कहा कि उनका कास्ट लिखिए, है ना। तो मेरे केस में ये था कि उन 10 में से 7 अपर कास्ट थे, और जो 3 थे उसमें से 2 मुस्लिम थे और सिर्फ 1 दलित था, है ना। तो मैंने अपने आप को क्वेश्चन किया यहाँ से कि ये क्या मतलब, मैं किस ग्रुप का हिस्सा हूँ। ये छोटी छोटी घटनाएं जो हुई हैं जीवन में, उन्होंने काफी हेल्प किया समझने को लेके अपने आप को।
आई थिंक मतलब मास्टर्स में काफी सारे अनुभव थे, पर आई थिंक जब मैं कॉलेज गई थी फर्स्ट टाइम अपने ग्रेजुएशन के लिए, एक एक्सपीरियंस था क्योंकि हम लोग कास्ट के बारे में पढ़ रहे थे एज अ सब्जेक्ट, और उस समय भी मतलब क्लास, उस क्लास में काफ़ी चर्चा होती थी और वो जो प्रोफेसर थे वो काफ़ी चर्चा को इनकरेज करते थे, तो हम लोग बुक्स या नोट्स को उतना देखते नहीं थे, पर वो थोड़ा एक्सपीरियंस के ज़रिए. आई रिमेम्बर जब कास्ट का जो मतलब पर्टिकुलरली एक सोशल थ्योरी पे क्लास हुआ था, उस समय क्लास काफ़ी क्वाइट थी और वो प्रोफेसर मतलब हम लोग को थोड़ा बाहर लाने का कोशिश कर रहे थे, और पर सब लोग ऐसे ही बोल रहे थे कि नहीं, हम लोग नहीं मानते हैं, या अभी के टाइम में कास्ट जैसे कुछ मुद्दा नहीं है, दुनिया बहुत बदल गया है, ऐसे बातें चल रही थी. ऑलमोस्ट मतलब सिमिलर टू व्हाट आई ग्रू अप हियरिंग. प्रोफेसर थोड़ा मतलब इंट्यूटिव था, तो उन्होंने बहुत साइलेंस था, तो उन्होंने बोला चलो एक चीज़ करते हैं कि इस क्लास में जो बच्चे कास्ट जिनको कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है, आप अपना हाथ उठाओ. तो उस समय आई रिमेम्बर कि 3-4 लोगों ने हाथ उठाया. तो
और कितना बैच का स्ट्रेंथ?
शायद 80 या उससे थोड़ा, अटेंडेंस में थोड़ा कम. तो 3 या 4 लोगों ने हाथ उठाया और उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है आंखें बंद करो अभी. तो उन्होंने बोला कि चलो अभी सबके आंखें बंद है, अभी बताओ, अभी हैंड रेज करो कितने बच्चों का मतलब कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन या रिजर्वेशन के थ्रू आपको एडमिशन मिले. उस समय ज़्यादा लोगों ने हाथ उठाए और उसने बस बोला कि मतलब जितने हाथ उठाए थे, अभी 4 और लोगों ने हाथ उठाए और उन्होंने बोला कि चलो आप अपने हाथ नीचे करो और हम आँखें खोलो. तभी बात हुआ कि क्यों हम लोग मतलब क्यों आपको क्यों ये डिफरेंस लगा. आई थिंक तभी भी मेरे मेमोरी में एक ही जन ने ऐसे खुल के बात किया कि मैंने क्यों अपना हाथ बाद में उठाया. ज़्यादातर उस समय भी ज़्यादातर जो लोग बात कर रहे थे ना, वो किसी और के मतलब उन्होंने ऐसे किया क्योंकि वो किसी और के लिए बात कर रहे थे, जो अभी मुझे एक अनदर मतलब ओप्रेसिव सिस्टम लगता है कि अपर कास्ट लोग सोच सकते हैं, वो किसी और का एक्सपीरियंस वो समझा सकते हैं. पर उस समय आई रिमेम्बर कि मेरे लिए जस्ट वो नंबर ऑफ डिफरेंस कि 4 से 8 लोगों ने अपने हाथ उठाए, कोई लोग तैयार नहीं थे. आई थिंक उस समय मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक ये फीलिंग था कि क्यों लोग ऐसे बोलना नहीं चाहते. मतलब हमारे क्लासमेट्स में ही लोग उनके साथ बर्ताव चेंज करेंगे, क्या मैं चेंज करूँगी? उनको क्या लगता है, वो शायद वो क्लियर नहीं हुआ होता, बट मुझे अपने अंदर वो सवाल आया कि क्या मैं ऐसे पेश आती हूँ कि मैं समझूंगी नहीं, मैं उनके साथ मेरा फ्रेंडशिप बदलेगा या ऐसे कुछ. और मुझे तब वो बहुत मेरे लाइफ में बहुत ऐसे एक्चुअली किसी ने ये टॉपिक छेड़ा और किसी ने वो जो डिस्कम्फर्ट है इसके बारे में बात करने के लिए वो फर्स्ट टाइम आया बाहर. तो आई थिंक वो एक इंस्टेंस था मेरे दिमाग में, वो बहुत रह गया.
मैंने भी जब उस डिबेट में पहली बार इस परिस्थिति का सामना किया, तब मेरे अंदर जो पहली फीलिंग आई थी वो गिल्ट की थी. इस बात का गिल्ट कि जाति पर आधारित जो शोषण हो रहा है, मैं उसका एक हिस्सा हूँ और मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ जिन्होंने यह शोषण किए हैं. कुछ समय बाद जब मैं अपने आप को उन लोगों से अलग देखने लगा, तब इस बात का गिल्ट था कि शायद अब मैं शोषण नहीं कर रहा, पर मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं जिससे यह शोषण कम हो. मैंने सिर्फ अपने आप को उन लोगों से अलग कर लिया है. गिल्ट पर मेरे दोस्तों ने मुझे कुछ यह बातें बताई.
है ना, खासकर जो लगान में वो सीन है ना, जब बाद में बहुत बाद में ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है कि उसका नाम कचरा क्यों दिया गया और क्यों नहीं दिया गया, बट उस टाइम तो ये अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई एक प्रयास था कि आंखें खोली. उसमें एक लाइन है ना, एक जो ईसा काका है वो कहते हैं कि जिनकी आंखें खुल गई हैं उसमें शर्म भी नहीं आ सकती है. सो इट वॉज दैट मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, मतलब एटलीस्ट फॉर मी, कि मतलब शर्म भी नहीं आ सकती है. तो एक तो जो मैं बहुत मानता हूँ एक चीज में, वो ये है कि एक कलेक्टिव गिल्ट है ना. तो जब ऐसे बुक्स पढ़ता हूँ मैं, तो एक गिल्ट की भावना आती है अंदर, है ना, कि शायद मैंने नहीं किया लेकिन मैं उस सिस्टम का हिस्सा हूँ, स्ट्रक्चर का हिस्सा हूँ, है ना. तो व्हेन वी विल एड्रेस दैट कलेक्टिवली, हम सब कलेक्टिवली एड्रेस कब करेंगे इस चीज को, अगर ये है तो, और कैसे एड्रेस करेंगे हम?
मतलब इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वेयर यू आर बॉर्न, और उससे सारा डिफरेंस बन गया. मतलब मेरा कुछ भी नहीं है इसमें, मैं जिस घर में पैदा हुई और वो जिस जाति से बिलोंग करते हैं या जिस जाति में वो बॉर्न हुए हैं या जो उनको एस्क्राइब्ड है, उसका फायदा है बस ये. और क्वेश्चनिंग फेज में थी बहुत कि इस बारे में बात करनी है या इस बारे में डिस्कस करना है, समझाना है या जो भी डायलॉग करना है, ये कैसे करना चाहिए. तो वो उस खोज में भी थी. बट आई थिंक इवेंचुअली अब ये अभी जो फीलिंग है वो गिल्ट से भी ज्यादा ये है कि कुछ मतलब सिर्फ गिल्ट से कुछ नहीं होगा, उसकी अर्जेंसी अब फील होती है.
मैंने जिनसे बात की सारे लगभग मेरे उम्र के थे, या ऐसा कह सकते हैं कि मेरी जनरेशन के लोग थे. हम सब इस शब्द से जूझ रहे हैं, गिल्ट, जिसको लेकर हमें आगे क्या करना है इसे हम अलग अलग तरीकों से देख रहे हैं. पर यह जानना बहुत ज़रूरी है कि उसका सीधा सरल सलूशन नहीं है. सबके साथ बात करके मुझे लगा कि गिल्ट के साथ बैठना पड़ेगा, और जैसे मेरे कुछ दोस्तों ने कहा, सिर्फ गिल्ट से कुछ नहीं होगा, उसको एक डायरेक्शन देना होगा. इस गिल्ट को लेकर आगे क्या करना है इस बात का जवाब मैं ढूंढ ही रहा हूँ. मुझे क्या करना चाहिए, यह सवाल फिर से मेरे सामने आया.
पहला रास्ता तो यही है कि हम उन छोटे छोटे इंसिडेंट एनेक्डोट्स को हम गैदर करें अपने लिए, और उस सबके लिए एक कलेक्टिव एड्रेस कैसे कर सकते हैं उसके रास्ते ढूंढें. फॉर मी इट इज गिल्ट, फॉर समवन एल्स वो कुछ और हो सकता है, किसी और के लिए वो विद्रोह हो सकता है कि वो जाके उसमें शामिल हो जाए. वो हो तो जब मैं मानता हूँ कि जात पात नहीं हो तो वो क्या रास्ते होंगे फिर, है ना, मेरे लिए. तो वो मैं ढूंढ रहा हूँ अपने लिए, लेकिन मतलब और जो जरूरी चीजें हैं उस पर काम कर रहा हूँ. अपने टाइटल्स को हटाना जो बहुत बड़ी जरूरत है वो है. एक कास्टर सोसाइटी के लिए बिलीव करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम क्या क्या और कर सकते हैं. पहले हम स्वीकार करें कि हम छोटे छोटे इंसिडेंट्स में कहाँ जाती देखते हैं अपने लिए.
I realize that there's a difference even when we look at social media कि
कौन यूज कर रहा है,
कौन यूज कर रहा है, कैसे यूज कर रहे हैं, क्या कौन सी एक्सपीरियंसेस ऑफ एक्सप्रेशन लिबरेशन वहाँ पे हो सकती है. लाइक वेरी ऑनेस्टली आई रिजेक्टेड टिकटॉक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड देन समवन पॉइंटेड आउट टू मी. आई टू ऑलवेज लुक एट इट, मतलब वो क्या लोग क्या कर रहे हैं अपने घर में, क्या क्या मतलब क्यों इतना नाचना है. बट आई रियलाइज दैट इट वॉज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन एंड दैट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन डिडंट हैव अ प्लेस एट सम प्लेस लाइक इंस्टाग्राम. अपने चॉइसेस में, अपने जजमेंट्स में मैं कहीं ना कहीं यही सिस्टम को परपेचुएट कर रही हूँ. That's what I'm saying. Like it's still something that every day, क्योंकि उसका लैंग्वेज बदलता है, उसका जो अपने लाइफ में वो पेश आता है उसका फॉर्म बदलता है. और एट फर्स्ट ग्लांस आई डू नॉट सी इट एज समथिंग दैट्स रूटेड इन कास्ट और समथिंग दैट्स रूटेड इन एनी फॉर्म ऑफ ये स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन. तो आई थिंक वो जो प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन है उसका ज़रूरत है कि मैं फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट मैं वो कर सकूँ. उसके लिए काफ़ी कुछ चीज़ें गिव अप करने की ज़रूरत है. टू लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट रीडिस्ट्रीब्यूटिंग, मतलब वो जो माइक बांटना है या जगह बनाना है, उसके साथ साथ अपने बहुत प्रिविलेजेस है जो हमको कहीं ना कहीं उनको छोड़ना है, उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, विच इज आई नो इट्स नॉट ईजी.
कास्ट जो है हर जगह से मिट सकती है, पर शायद परिवार से नहीं मिट सकती. आप परिवार का हिस्सा किसे बनाना चाहते हैं, शादियों के थ्रू, दोस्तियों के थ्रू, वो बहुत जरूरी है. तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम है. तो ये सब कुछ जो हो तभी होगा जब हम एड्रेस करेंगे उस इंसिडेंट को, हम जो एलिफेंट इन द हाउस को हम एड्रेस करेंगे.
मुझे अच्छी तरह से याद है अपने भाई के शादी के समय भी मेरे घर में सामने वाली व्यक्ति की जाति के बारे में चर्चा की गई थी, और उसके वजह से हमारे समाज में हमारे बारे में क्या बातें की जाएंगी इसके बारे में भी बात की गई थी. मेरे पिताजी जो शुरुआत से ही अंतरजातीय विवाह के खिलाफ है, अपने समाज में उन्होंने इस तरह के विवाह को हमेशा ही विरोध किया है. जब हमारे ही घर में अंतरजातीय विवाह की बात चली तब मेरे पिताजी को यह चिंता थी कि समाज के लोग उन्हें समाज से बाहर न कर दें. पर शादी के कुछ समय बाद अब सब ठीक होने लगा है. पर इसका मतलब यह नहीं कि मेरे पिताजी अभी इस तरह के शादियों के हित में हैं. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहने को तो जाति व्यवस्था को नहीं मानते, पर जैसे ही शादी की बात आती है तो दो मुद्दे टेबल पर रख देते हैं. पहला, हमारे समाज के लोग क्या कहेंगे, और दूसरा, उनके तरीके अलग होते हैं, हमारे तरीके अलग होते हैं, तुम उसके साथ कैसे एडजस्ट कर पाओगे या वो हमारे साथ कैसे एडजस्ट कर पाएंगे. कभी कभी यह लगता है कि अपनी झूठी ओपननेस को छिपाने के लिए इस तरह के लाइंस का सहारा लिया जाता है. बाकियों ने भी यह अनुभव मुझसे शेयर किए कि जाति और रोमांस का कैसा गहरा रिश्ता है.
मुझे याद है कि मेरी दादी ये मुझे बताती थी कि जब वो लोग वो और मेरे दादा शादी करना चाहते थे, उनका लव मैरिज था, तो जब उन्होंने घर पे बताया तो घर पे यही सवाल था थे तो वो क्रिश्चियन, पर घर के यही सवाल थे कि वो ब्राह्मण क्रिश्चियन है ना, तो उस समय में भी उनको, मतलब आई थिंक उनके फैमिली 2-3 जनरेशन पहले क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके थे, पर तभी भी उनकी मम्मी के मन में ये था कि वो मतलब ब्राह्मण के लाइन से आए हैं. तो मुझे मतलब ये बहुत क्लियर है अपने उसमें कि जितना भी हम लोग, मतलब हमको लगता था, मेरे फादर का फर्स्ट रिस्पॉन्स था कि हम तो क्रिश्चियन है, हमको मतलब जाति से कुछ लेन देन नहीं है. पर इट वॉज वेरी इंट्रिंसिक, मतलब धीरे धीरे से मुझे पता चला कि जो हम लोग एज अ फैमिली एंड एज इंडिविजुअल्स इस फैमिली में हम लोग जो रिश्ते बनाते हैं वो ज्यादातर अपर कास्ट लोगों के साथ है.
पर मेरे लिए बहुत बड़ा सवाल ये रहा है कि जो मैंने आज तक प्यार किया है जिंदगी में, है ना, तो मैं इस चीज में नाकामयाब रहा हूँ कि मुझे किसी अलग धर्म में प्यार हो, या फिर हुआ भी है तो मतलब एक 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 रिश्ता बने, वो नहीं बन पाया है. मुख्य रूप से मैं यही कहूंगा कि जो अभी भी, मतलब एक कविता है मतलब मेरी कि मतलब जिस दिन लड़कियों के ख्वाब में मजदूर आने लगेंगे और जिस दिन लड़कों के ख्वाब में भी मजदूर आने लगेंगे, उस दिन से शायद सामाजिक न्याय की बात होनी ज्यादा शुरू हो जाएगी. तो हमारे ख्वाब में भी जो होते हैं हमारी प्रेमिकाएं, वो कैसी दिखती हैं, वो कौन होती हैं, ये बहुत जरूरी है. और शायद मेरे अंदर का वो डर है जो शायद वो आगे नहीं बढ़ने देता है इस चीज को लेके.
मेरे प्यार में भी जाती है, तो कैसे हम कह सकते हैं अरे छोड़ो अब जाति कहाँ. मैंने शुरुआत यह पूछकर की थी कि हम जाति कहाँ सीखते हैं. बात करते करते ये समझ आ रहा है कि इन सीखी हुई बातों को तोड़ पाना, चैलेंज कर पाना, खुद के घर वालों और समाज के लोगों से बात कर पाना एक दिन या एक मोमेंट में नहीं होगा. जैसे वो सालों से सीखी हुई बातें या व्यवहार है, वैसे ही कई साल लगातार कॉन्शियसली काम करना होगा जो सीखा है उसे अनसीखा करने के लिए. कुछ साल पहले एक मराठी किताब में मैंने एक लाइन पढ़ी थी, जाता जात नहीं ती जात. हिंदी में उसका अनुवाद है, आसानी से जाती नहीं वो जाती. शायद और कई सालों तक यह लाइन उतनी ही रेलेवेंट होगी जितनी वो तब थी जब लिखी गई थी. मेरा यह प्रयास मेरे जैसे ही दोस्तों तक पहुंचने के लिए है जिनको अभी के समय पर अपने आसपास जाति दिखाई नहीं देती, जिन्हें लगता है कि इस समय में जाति रेलेवेंट नहीं है. उन्हीं दोस्तों और परिवार के सदस्यों के लिए है जिनके साथ मैं जाति पर किसी चर्चा में ठीक से एंगेज नहीं कर पाता. यह अपेक्षा नहीं है कि इस प्रयास के बाद उनकी सोच झट से बदल जाए, पर एक चर्चा शुरू हो जहां वो भी सोचे कि आजकल जाति कहाँ है, किन तरीकों में है. आप भी सोचो, मैं भी इसमें लगा रहूंगा. आजकल जाति कहाँ है.